ओम शांति। ज्ञान वर्षा के साथ साथ बाहर की वर्षा भी अच्छी हो रही है, इसलिए आप में से ज्यादा लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। सुबह में ज्ञान योग की वर्षा हुई, सुदेश दीदी जी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। दीदी तो मुरली अच्छा सुनाती ही हैं, बाबा उनको बुलबुल कहते थे, ज्ञान बुलबुल। बुलबुल की वाणी बहुत मीठी होती है ना, बहुत मीठा बोलती है, तो बाबा अक्सर दीदी को ज्ञान बुलबुल कहते थे। तो आज काफी दिन ज्ञान सरोवर में व्यतीत करने के बाद दीदी विदेश यात्रा पर गई हैं, और ऐसी आत्माएं जहां जाती हैं वहां के भाग्य खुल जाते हैं, अनेकों का भाग्य खुल जाता है, हमारा भी भाग्य खुला है। ऐसे ही किसी आत्मा के द्वारा हमारा भी भाग्य खुला है, और भाग्य खुलने का जो आधार है वो बाबा की मुरली है ना। बाबा की मुरली ने हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना दिया है। हम लोग मुरली सुनते तो हैं, परंतु उसको कितना समझते हैं, उसको कितना चिंतन करते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। उसको ध्यान से सुनना, फिर उसका मंथन करना और उसका मक्खन निकालना, और फिर उसे सारे दिन की दिनचर्या में प्रयोग में लाना, ये बहुत जरूरी है। जीवन सिर्फ सुनने से नहीं बदलता है, जीवन करने से बदलता है। तो करने से पहले हमें मुरली का सार अपने अपने ढंग से चिंतन करके निकालना बहुत जरूरी होता है ना। आज की मुरली अव्यक्त मुरली थी, फरवरी 2006 की मुरली है ये, 25 फरवरी, और ये शिव जयंती का समय है, और बाबा त्योहार मनाने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसी बातें कह देते हैं मुरलियों में, जिनको यदि हम अपने ध्यान में रखें, जीवन में अगर थोड़ा भी उपयोग करें, थोड़ा थोड़ा रोज उसे उपयोग में लाएं, तो ये जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। आज शुरुआत में ही बाबा ने कहा कि बच्चे, दुनिया में जयंती तो बहुत सारी मनाई जाती है, लेकिन ये जो जयंती है शिव और शिव पुत्रों की जयंती ना, बाप और बच्चों की जयंती, अपने आप में कैसी जयंती है ये, एक विचित्र जयंती है, एक अनोखी जयंती है, क्योंकि दुनिया में कभी भी जयंती किसी एक व्यक्ति का मनाया जाता है ना, और यहाँ पर बाप और बच्चे, और वो भी ढेर सारे बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, सागर के कितने बच्चे दिखाए हैं भक्ति में, सागर के कितने बच्चे दिखाए हैं 60,000, और यहाँ कितने हैं 6 लाख 10 लाख से भी ज्यादा है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि बाप और बच्चों की जयंती एक साथ मने, दोनों एक ही दिन पैदा हों, एक ही समय पर पैदा हों, लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे ही मैं धरती पर आता हूं, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी जन्म हो जाता है। सूक्ष्म में बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेता है, भल ड्रामा पार्ट अनुसार कोई आज आया, कोई कल आया, कोई 50 साल पहले आया, कोई 70 साल पहले ज्ञान में आया, लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं, एक सूक्ष्म अलौकिक जन सब बच्चों का, जिनका पार्ट है सतयुग और त्रेता में, खास करके 9 लाख आत्माएं जो प्रारंभ में आती हैं, जो इस संसार को चलाती हैं, उनका जन्म तो उसी समय हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है विचित्र जयंती, और बाबा कहते हैं कि इस जयंती पर जो भगत हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जो भगत हैं व्रत भी रखते हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले वो पुकारते हैं ना भगवान को, भक्ति में भगत पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं, भगवान से वो मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं। क्यों भगवान से मिलना चाहते हैं भगत, हम बाबा से क्यों मिलना चाहते थे, हम भी तो मिलना चाहते थे ना। वो बात अलग है कि हमने भगवान को ढूंढा नहीं, भगवान ने हमको ढूंढा, पर मिलना तो हम भी चाहते थे। हम क्यों भगवान से मिलना चाहते थे, जीवन में दुख शांति बहुत बढ़ गया था, दुख शांति बहुत बढ़ गई थी। और हमें ये भी पता है कि दुनिया में अगर इसका इलाज किसी के पास है तो वो केवल भगवान के पास, शिव बाबा के पास है। तो जो सच्चे भक्त हैं वो भक्ति में पुकारते हैं, अभी भी पुकार रहे हैं कि कब मिलोगे, मिल जाओ, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मिल जाओ। क्योंकि गीता में कहा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानी होगी तब तब मैं आऊंगा, तो इतना तो विश्वास है ही ना कि आएगा जरूर, परंतु पता नहीं है कि कब आएगा, किस रूप में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भक्ति में है वो पुकार रहे हैं अभी भी, और हम क्या कर रहे हैं, हम मिलन मना रहे हैं ना। बाबा ने हम दोनों के सौभाग्य को कंपेयर किया है। वास्तव में भगत जितनी कठोर साधना करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हम उतनी करते नहीं है। बाबा ने हमारे जीवन को इतना सहज कर दिया है, चाहे उसका प्यार कहें, चाहे हमारा अलबेलापन कहें, दोनों ही कारणों से हम उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो मेहनत करते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं सौभाग्य तुम्हारा बहुत बड़ा है, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं और तुम बच्चे मिलन मना रहे हो। फिर बाबा कहते हैं कि अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए ना, तो वो सामने वाले से मेहनत कराना नहीं चाहता है ना। भगत अभी भी ढूंढ रहे हैं और भगवान ने आकर के हमको क्या किया, ढूंढ लिया ना, हमको ढूंढने की मेहनत करने नहीं दी। क्योंकि पता था उसको कि भक्ति मार्ग में इतनी उलझन है, इतना विस्तार है, इतने मत मतांतर है कि बच्चे तो मेरे को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे ना। कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है दुर्गा को पूजो, कोई कहता है हनुमान को पूजो, तो बच्चे तो कभी भी ये अंतर समझ नहीं पाएंगे, मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर उनकी सदगति होगी कैसे, उनके जीवन का दुख मिटेगा कैसे, आकर के हमें ढूंढ लिया। तो कितना बड़ा एहसान बाबा ने किया ना हमारे ऊपर। तो बाबा आज वो सौभाग्य कंपेयर करके हमारा उमंग, हमारा नशा बढ़ाना चाहते हैं कि वास्तव में तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम अपने भाग्य को समझो, उसकी सराहना करो, उसके चिंतन में रहो, उसके नशे में रहो। फिर बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि पर, जिसे हम शिव जयंती कहते हैं, लोग व्रत रखते हैं ना। और व्रत क्या रखते हैं, दुनिया में व्रत किस चीज का रखा जाता है, भोजन का व्रत रखा जाता है ना। इसको भी हमें समझना है, भोजन से व्रत यानी साधना का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। चाहे वो भक्ति की साधना हो या ज्ञान मार्ग में हम योगी आत्माएं हो, दोनों के जीवन में भोजन का हमारे योग से, हमारी तपश्चर्या से गहरा कनेक्शन है। भोजन केवल सात्विक ही नहीं होना चाहिए, सात्विक होना ये एक कंडीशन है, परंतु सात्विक के साथ साथ योगियों का भोजन अधिक भी नहीं होना चाहिए। बीच बीच में भोजन को त्यागना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान भी इस चीज को मानता है और अध्यात्म भी इस चीज को मानता है कि पेट यदि थोड़ा खाली होगा तो ब्रेन थोड़ा ज्यादा काम करेगा। पेट खाली होता है तो ब्रेन तेज फंक्शन करता है। और योग हम किससे करते हैं, मस्तिष्क से ही तो करते हैं ना। मन कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, मन सब कुछ ब्रेन के थ्रू करता है। तो पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। इसी के यादगार स्वरूप भक्ति में व्रत दिखाया है कि लोग व्रत रखते हैं, और वो भी व्रत कितने दिनों का रखते हैं, एक दिन का रखते हैं, कोई दो दिन का रख लेगा, कोई दस दिन का रख लेगा, ऐसा ही होता है ना। अभी सोमवार ही चल रहा है ना, तो हर सोमवार का मुस्लिम लोग रोजा में शायद एक महीने का रखते हैं ना, एक महीने तक रखते हैं। पर हमारा व्रत कितने दिनों का है, हमारा व्रत पूरे जीवन भर का है ना। हम जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक जीवन भर हमारे लिए क्या है, व्रत है, परंतु हमारा व्रत कौन सा है? भोजन का व्रत नहीं है। हमारा व्रत कौन सा है? बाबा ने कहा पवित्रता का व्रत। हम जो व्रत रखते हैं पवित्रता का व्रत, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है। खेल तो सारा पवित्रता का ही है ना। देवी देवताएं पवित्र थे तो सारे गुण थे, अपवित्र बनते गए, गुण धीरे धीरे निकलते चले गए। तो खेल सारा पवित्रता और अपवित्रता का है। तो हमने जो व्रत लिया है वो व्रत लिया है पवित्रता का, और वो भी एक दिन का नहीं, बल्कि हमारा जो है जीवन भर का व्रत है। और बाबा कहते हैं पवित्रता केवल ब्रह्मचारी को नहीं कहते हैं, हमें से बहुत सारे लोग इस चीज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमने तन की शुद्धि कर ली तो ये हमारी पवित्रता हो गई। बाबा कहते हैं ये बहुत मोटी धारणा है। भगवान का भगवान मिल जाए और उसके बाद केवल ब्रह्मचर्य, ये तो बहुत सहज है। दुनिया में भी लोग कर लेते हैं, जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, जो योगी नहीं है, वो भी ब्रह्मचारी रहते हैं और कई सिंसियरली भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य इसको पवित्रता नहीं। बाबा कहते हैं हमारा आहार व्यवहार संस्कार सब कुछ पवित्र बन जाए, हमने ऐसा व्रत लिया है, तो धीरे धीरे हम योग से, ज्ञान के मनन चिंतन से अपने पूरे जीवन को ही पवित्र ले रहे बना रहे हैं, ये हमारा व्रत है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि केवल पवित्रता का ही व्रत लिया है, बाकी जो चार हैं क्रोध लोभ मोह संस्कार अहंकार, उनको छोड़ दिया या उनका भी व्रत है, पूछा है ना बाबा ने बीच में एक जगह। तो बाबा ने कहा केवल पवित्रता ही नहीं, क्रोध का भी हमने व्रत लिया है। जितना काम नुकसानदायक है, कभी कभी क्रोध उससे ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है ना। बाबा दो ही विकारों को महाशत्रु कहते हैं, काम और क्रोध को महाशत्रु महाविकार, बाकी तीन को महाशत्रु नहीं कहते। काम और क्रोध महाविकार है, एक सेकंड का क्रोध हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक कड़वा बोल हमारे पूरे जीवन को खराब दुखी कर सकता है। द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला था ना, अंधे की औलाद, क्या रिजल्ट हुआ? उसका भी जीवन खराब, साथ साथ जो कौरव थे उनका भी जीवन खराब। पांडव भी दुखी, कौरव भी दुखी, यादव भी दुखी, सारा समाज दुखी, सब लड़ मरे आपस में। तो बाबा कहते हैं हमें क्रोध का भी व्रत लेना है, और व्रत कैसा लेना है? हमारे व्रत मोटे मोटे व्रत नहीं है, मुख से किसी को बोलना, डांटना, गाली देना, ऊंची आवाज में बात करना, बाबा कहते नहीं, ये तो बड़े जो शुरू के ज्ञान में चलने वाले हैं ना उनके लिए होता है। बाकी जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनके लिए क्या धारणा है? बाबा कहते हैं कि मन में भी क्रोध ना आए। कई बार हम ज्ञान में जब थोड़े पुराने हो जाते हैं, हमारी समझ बढ़ जाती है, तो मन से क्रोध नहीं कर मुख से क्रोध नहीं करते, लेकिन फिर भी मन में क्रोध आता रहता है ना। जब भी सामने देखेंगे मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो बाबा कहते हैं मन में या दिल में भी क्रोध का भाव न हो। बाबा एक स्टेप और आगे बढ़ करके कहते हैं कि बच्चे स्वप्न में भी क्रोध की भावना ना हो। मन में तो हो ही नहीं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म हो जाता है स्वप्न। कई लोग पूछते हैं, एक स्टेज ज्ञान मार्ग में ऐसी आती है 10 20 25 साल ज्ञान में चलने के बाद, सिंसियरली ज्ञान में चलने के बाद, अच्छा योगी जीवन बिताने के बाद एक अवस्था ऐसी भी आती है जब हमको समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर काम या क्रोध है कि नहीं है। ऊपर से हम बिल्कुल शांत और शीतल रहते हैं, लोग हमें कुछ बोलते हैं तो भी असर नहीं पड़ता है, एक बहुत अच्छी अवस्था हमारी रहती है, लेकिन वो पूरी तरह से जड़ से बीज से मिटा है कि नहीं मिटा है उसको कैसे पहचाने? क्योंकि कई बार ऊपर की टाल टलियां टहनियां तना भी कट जाता है, उसका बीज रह जाता है, उसको कैसे पहचाने। तो बाबा ने कभी कहा कि बच्चे अपने स्वप्न को चेक करो, अगर नींद में तुम्हारे अंदर गलत विचार आते हैं, गलत दृश्य दिखते हैं, समझो अभी भी हमारी पवित्रता अधूरी है। अगर नींद में क्रोध आता है किसी के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट है, अभी भी हमारा क्रोध पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। तो मन से भी ज्यादा सूक्ष्म स्वप्न है, हमें अपने स्वप्नों को चेक करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हमें क्रोध का भी व्रत लेना है, और बाबा ने कहा ईर्ष्या और जेलसी है ना। कई बार हम सोचते हैं कि किसी पर गुस्सा करना ही क्रोध है, बाबा कहते नहीं, अगर मन ही मन किसी से हम जलते हैं, उससे नफरत करते हैं, द्वेष की भावना है, ये भी क्रोध का ही एक अंश है, तो बाबा कहते इसको भी त्यागना है। फिर बाबा कहते हैं कि जब भी कोई जन्मदिन मनाते हैं तो व्रत के साथ साथ, चलो ये तो बाबा ने शिव जयंती की बात की, अब कॉमन दुनिया में जब कोई जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या करते हैं, केक काटते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे कौन सा केक काटना, कौन सा गिफ्ट देना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो वेस्ट थॉट है ना मन में, कई बार निगेटिव इतना नहीं होता है, वेस्ट मन में बहुत होता है, जो बातें भले निगेटिव क्वालिटी में नहीं आती है लेकिन अनावश्यक बातें मन में बहुत होती हैं, ऐसी बातों से हमारा मन भरा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि मन वाणी कर्म वचन व्यवहार संबंध संपर्क में जितना वेस्ट है ना, वो धीरे 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 हमारा कम होता जाए। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे जो है हमारा जीवन हल्का और सुखदाई, मन निश्चिंत और जीवन एक रस बनता जाएगा। बाबा कहते हैं ये जो वेस्ट थॉट्स है ना, ये कई बार मन को बुरी तरह से उलझा देते हैं, और जब मन कहीं पर उलझ जाता है तो फिर योग लगाना बहुत ही मुश्किल महसूस होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि आज के दिन तुम ये गिफ्ट दो बाबा को कि बाबा आज से हम व्यर्थ न सुनेंगे, न देखेंगे, न पढ़ेंगे, न बोलेंगे, न सोचेंगे। फिर बाबा कहते हैं आगे लास्ट में बाबा ने कहा कि बच्चे सबको साथ चलना है, अकेले तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि बाबा ने आते ही एक वायदा हम सबसे कर दिया था कि बच्चे बाबा संगम पर आता है और जब जाता है तो सबको साथ ले करके जाता है, अकेले नहीं जाएंगे, तुमको लेकर के ही जाएंगे। बाबा 1969 में जब अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, तो लोगों ने यही शिकायत की, आपने तो बोला था छोड़ के नहीं जाएंगे, आप तो बीच में ही छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा बच्चे कौन कहता है मैं छोड़ के चला गया, मैं तो अभी सूक्ष्म वतन में बैठा हूं, परमधाम थोड़ी गया हूं, जब जाऊंगा तो मैं साथ लेकर के जाऊंगा। वायदा है ना, भगवान ने किया हुआ है, किसी इंसान ने थोड़ी किया है, इंसान तोड़ सकता है, भगवान कभी अपना वायदा नहीं तोड़ता। तो बाबा ने कहा कि अगर साथ चलना है तो समान बनना होगा, जैसे बाप के मन में कोई व्यर्थ नहीं, हमारे मन में भी व्यर्थ नहीं, जैसे बाप का पूरा जीवन पवित्र है, हमारा जीवन भी पवित्र होता जाए, जैसे बाप के मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या जलन क्रोध की भावना नहीं, हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए, हमें भी पूरी तरह क्रोध मुक्त बनना है। और बाबा ने कहा एक जगह कि अगर सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये दो गुण है हमारे अंदर, तो हम क्रोध पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यही समान बनने की श्रृंखला में बाबा ने एक और बात कही कि समान बनना है तो न दुख देना है न दुख लेना है। दुख देना नहीं है, इस पर हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, इतनी अच्छी बातें सुनते हैं, भगवान स्वयं पढ़ाता है, इतना ऊंचा ज्ञान है, तो बुद्धि में ये तो क्लियर है कि हमें दुख किसी को देना नहीं है, परंतु लेना भी नहीं है, ये हम भूल जाते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने समय पर सम्मान नहीं दिया, किसी ने समय पर सहयोग नहीं दिया, समय पर कोई प्राप्ति नहीं हुई, कहीं पर कोई घाटा लग गया, बच्चे थोड़ा सा गए, जो बच्चों से हम चाहते थे वो हमारी फुलफिलमेंट नहीं हुई, बच्चों 90% चाहिए था 80% आया। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हमको दुखी करती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा एक पुरुषार्थ ये भी है कि बच्चे दूसरों से कोई दे तो भी मत लो, क्योंकि ये संसार कांटा है, कांटा तो चुभेगा ही, हमें उस चुभन को महसूस नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं अगर दुख लेते रहे तो कभी भी बाप समान बन नहीं पाएंगे, इसलिए जीवन है तो बातें रहेंगी। आप कितने भी बड़े योगी बन जाएं, बाबा ने कभी किसी मुरली में नहीं कहा कि योगी का मतलब ये कि जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, समस्याएं हमारे कर्मों का फल हैं, जरूर आएंगी, उनको महसूस करना न करना, उनको बड़ा करना छोटा कर देना ये हमारे हाथ में है। तो बाबा कहते हैं दुख लेना नहीं है, छोटी छोटी बातों को भूलते जाना है, अवॉइड करते जाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में जो मैं आपको याद दिलाऊं, बाबा ने कहा, टाइम हो गया है, बाबा ने कहा कि अगर किसी भी चीज का, इसी दुख ना देना दुख ना लेने की बात को आगे बाबा इसके रेफरेंस में बाबा ने कहा कि यदि किसी भी चीज का अभ्यास एक मास कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है ना। आदत चाहे अच्छी हो या आदत बुरी हो, उसके बनने का आधार क्या है, बाबा कहते हैं अभ्यास उसका। हम अभ्यास करेंगे उतना वो आदत पक्की होगी। तो अगर एक मास किसी चीज का हम अभ्यास करते हैं, एक मास मुझे दुख किसी को देना नहीं है, दुख किसी से लेना नहीं है, तो बाबा कहते हैं एक मास के बाद वो धारणा आपके लिए सहज हो जाएगी, वो चीज आपके आदत में शुमार हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो आपके जीवन का एक अंग बन जाएगा। विज्ञान भी इस चीज को मानता है, लौकिक दुनिया में भी इस पर रिसर्च हुआ है, 21 दिन तक यदि कोई अभ्यास किया जाए तो वो ह्यूमन नेचर बन जाता है, इंसानी आदत बन जाता है। बाबा उसको 30 दिन कहते हैं, 30 दिन यदि हम अभ्यास करें तो हम जीवन में कोई भी धारणा अपनाना चाहते हैं, कोई बुराई छोड़ना चाहते हैं, हम उसको एक महीने का एक लक्ष्य बना करके चले, क्रोध अपवित्रता दृष्टि वृत्ति, किसी के बोल कड़वे हैं, बाहर का भोजन करने की आदत है, देर से उठने की आदत है, लक्ष्य बनाए, एक गुण को ले, एक महीने तक उसका अभ्यास करें, फिर देखेंगे धीरे धीरे वो हमारे लिए सहज होता जा रहा है। फिर बाबा ने एक बात कही कि दुखियों ये संसार पुकार रहा है, क्योंकि ये संसार दुखी बहुत है, पुकार रहा है, क्या तुम्हारे कानों तक उनकी आवाज आ रही है। हमें से 99% लोग बोले या ना बोले, स्थिति यह है कि उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रही, दूसरे के दुखों को हम महसूस नहीं कर रहे। कारण बाबा कहते हैं कि हम अपने में ही बिजी रहते हैं, अपने में ही बिजी रहते हैं। अब अपने में बिजी नहीं रहना है, पुरुषार्थ करना है, विश्व कल्याण की बातें सोचनी है, तो उनकी आवाज हमारे कानों में आएंगी, और जब कानों में आएंगी तो हम उनके लिए रहम की दृष्टि रख पाएंगे। और अभी जितना हम दूसरों के लिए रहम दया करुणा का भाव अपने अंदर भरेंगे, द्वापर से वही हमारी मूर्तियों से रिफ्लेक्ट होगा। बाबा ने कहा लंबे समय तक अगर हमारे मन में दूसरों के लिए करुणा का भाव है, दया का भाव है, जितना अधिक है द्वापर में, कलयुग में, हमारी मूर्तियों से लोगों को वो उतना ही महसूस होगा, उन मूर्तियों में वो वाइब्रेशंस भरते जाएंगे। इसलिए लंबे काल का भी बाबा कहते हैं, बहुत जोर देते हैं, लंबे काल का अभ्यास, लंबे काल का योग, लंबे काल का, लंबे काल की पवित्रता, बाबा लंबे काल का बहुत उस पे बल देते हैं। तो अभी से बाबा कहते हैं अपने अंदर ये संस्कार भरो। और लास्ट में बाबा ने हमको एक ड्रिल कराया और करा करके सिखाया कि हमें योग कैसे करना है, कृष्ण रहता है चक्र कैसे फिराना है। बाबा ने हमें बताया यही सुदर्शन चक्र है, ऐसे ही तुम्हें योग करना है। बाबा ने कहा बच्चे तुम पहले परम धाम जाओ, थोड़ी देर परम धाम में रहो, लाल रंग की चांद वहां पर स्टार सातमाएं चमक रही हैं, ऊपर में बाबा है। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म तन में आ जाओ, बादलों की दुनिया ब्रह्मा बाबा वहां प्रकाश के शरीर में। फिर बाबा कहते हैं वहां से स्वर्ग की दुनिया में जाओ, जो दुनिया आने वाली है चक्कर लगाओ। और फिर बाबा कहते वहां से फिर संगम में आ जाओ, संगम की क्या महिमा है उसका चिंतन करो, और फिर मधुबन में आ जाओ। अभी तो आप मधुबन में ही हैं, लेकिन जब आप मधुबन से जाएंगे अपने अपने घरों में तो मधुबन में आना। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे अगर तुम्हारा मन कभी उदास हो, मन न लगता हो तो मधुबन में आ जाओ, मन से मधुबन में आकर सैर करो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठो, शांति स्तंभ पर बैठो, बाबा के कमरे में बैठो। बाबा ने कहा ये भी एक प्रकार का योग। तो योग कैसे करना है, सुदर्शन चक्र क्या है, ये भी आज की मुरली में बाबा ने हमको सिखाया। ओम शांति।